તારીખ 5/1/1998 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 108 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું બેંગ્લોરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 29
108મો પત્ર ચાલે છે. આત્માનું સ્થિર આત્મામાં છે. જ્યાં સુખ નથી એવા પર પદાર્થમાંથી આત્માનું સુખ પ્રાપ્ત થઈ શકતું નથી. સંબોધનની ભાષામાં આ પત્ર લખ્યો છે કે હે જીવ, તું ભ્રમણાથી પર પદાર્થમાં સુખનો નિશ્ચય કરી બેઠો છો અને સુખ માટે પ્રયત્ન કરે છો, તો સુખ કદી એ રીતે પ્રાપ્ત થઈ શકે એવું છે નહીં. આ માટે કેટલાક વચનો એમણે લખ્યા છે. આ મારું છે એવા ભાવની વ્યાખ્યા પ્રાય ન કરશે. સુબહ જો ચલા થા વહાં સે થોડા આગે લે રહે યે મેરા હૈ એસે ભાવ કી વ્યાખ્યા પ્રાય નહીં કર નહીં કરે ક્યા કહેતે હૈ અન્ય પદાર્થ મેં અપનામ ઉત્પન્ન હુએ ઉસ પ્રકાર સે બાત નહીં કરના. અન્ય પદાર્થ મેં અપનાપન હુએ ઇસ પ્રકાર સે બાત નહીં કરના ચાહીએ. क्यों कि अस्तित्व भिन्न भिन्न है. आत्मा का अस्तित्व कहीं दूसरे पदार्थ में है नहीं, फिर भी अपनत्व मोह के कारण से होता है. ये संसार का कारण बनता है, परिभ्रमण का कारण बनता है. इसलिए अन्य पदार्थ में यह मेरा है ऐसी बात नहीं करनी चाहिए. साथ ही ये उसका है ऐसे मानकर नहीं बैठना. कोई किसी का नहीं है, कोई मेरा भी नहीं है और कोई किसी का नहीं है. पदार्थ पदार्थ में है, आत्मा आत्मा में है, सभी आत्मा अपने में है और कोई पदार्थ का अस्तित्व एक दूसरे में कभी होता ही नहीं. ऐसी एक वस्तु स्थिति है. मोह से लगता है कि ये मेरा है ये तेरा है, ये मेरा है ये तेरा है. इसके लिए ऐसा करना है यह भविष्य निर्णय करके नहीं रखना. मैंने ये मेरापना तेरापना करके मान करके ऐसा रख करके कोई भविष्य का ऐसे करना वैसे करना ऐसा प्लान नहीं करना, प्लानिंग नहीं करना, क्योंकि भविष्य की एक चिंता हो जाएगी. वास्तव में तो इसलिए ये बात कही है कि जीव दूसरे पदार्थ की चिंता जब तक करता है उसको अपनी चिंता नहीं होती. हमारे लिए दूसरे सभी पदार्थ अनात्मा है. हम आत्मा है और हमारे लिए दूसरे सभी पदार्थ अनात्मा है. जो जीव अनात्मा की चिंता करता है उसको स्वयं के अपने आत्मा की चिंता नहीं होती कि मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा अकल्याण कैसे हो रहा है, वो चिंता उसको नहीं होती। जिसको अपने आत्मा की चिंता होती है कि मेरा कल्याण हो जाए या कल्याण नहीं हो, उसको अनात्मा की चिंता नहीं होती। एक प्रश्न रखा जाए कि अनेक समस्याएं हैं छोटी मोटी हमारे सामने, सबसे बड़ी समस्या को का समाधान हम ढूंढेंगे या छोटी मोटी समस्या का समाधान करेंगे, क्या करेंगे? जैसे हमको बहुत से काम हैं, कुटुंब परिवार के काम हैं, इसकी कोई जिम्मेवारी है, धंधा रोजगार का काम है, व्यवसाय का, इसमें भी बहुत सी प्रकार की जिम्मेवारी होती है, और हमारी तबीयत जो है उसमें भी कोई बड़ी तकलीफ हो गई, चेस्ट पेन हो गया। अब बहुत से बात है, हमारे सामने बहुत से काम हैं, हम सबसे पहले कौन सा काम करेंगे? घर का करेंगे, दुकान का करेंगे, समाज का करेंगे, देश का करेंगे, या हमारे हार्ट प्रॉब्लम का करेंगे, किसका करेंगे? ये सबसे जो बड़ी समस्या है उसका ही काम करना पड़ेगा, सबको साइड में रख करके। क्या होगा? क्यों? कि मृत्यु का कारण बन सकता है, ये जो पेन है वो मृत्यु का कारण बन सकता है। अभी एक मृत्यु का कारण को ठीक करने के वास्ते हमको सभी काम को छोड़ करके सबसे पहले उसको प्रायोरिटी देनी पड़ती है। तो अनंत जन्म मरण की समस्या तो सबसे बड़ी है कि नहीं? एक मृत्यु एक मरण की समस्या अगर बड़ी है तो अनंत जन्म मरण की समस्या कितनी बड़ी है कि अनंत गुणी बड़ी है? वो तो सादा गणित है, सिंपल कैलकुलेशन की बात है वो। तो उसको हम पहले ठीक करने जाएं या छोटी मोटी बात ठीक करें, बताइए। इसलिए जिसको आत्मकल्याण की चिंता होती है उसको अनात्मा की चिंता नहीं होती, संयोग की चिंता नहीं होती, उदासीनता आ जाती है, संयोग के प्रति उदासीनता आती है। कृपालु देव ने 172 नंबर के पत्र में लिखा है, निरंतर उदासीनता का क्रम का सेवन करना, निरंतर। तो ये क्रम का प्रारंभ यहां से होता है। अपने पहला स्वाध्याय 195 नंबर का पत्र पर किया, उसमें वही बात है कि जिसको परिभ्रमण की चिंता होती है उनको मोक्ष मार्ग की दिशा की सूझ आती है। इसके पहले मुक्ति का मार्ग कहाँ है, कैसा है, उसकी दिशा सूझ नहीं होती। तो इसलिए यहां ऐसा कहा है कि इसके लिए ऐसा करना, ये भविष्य का निर्णय करके नहीं बैठना, क्योंकि ये चिंता हो गई भविष्य के संयोग की कि ये मेरा है ये मेरा नहीं है, ऐसी व्यवस्था करना है वैसी व्यवस्था करना है, भाइयों के साथ ऐसी व्यवस्था करनी है, परिवार की ऐसी व्यवस्था बिठानी है, भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए, भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए, इसकी चिंता जिसको होती है, चिंता मैंने चिंता उसको आत्मा की चिंता नहीं होती। और जिसको आत्मा की चिंता होती है उसको भविष्य की चिंता नहीं होती। ज्ञानी को भविष्य के एक क्षण के भी चिंता नहीं होती। दुनिया में ये बात उल्टी पड़ती है, दुनिया में ये बात उल्टी पड़ती है कि कल की तो पहले सोचना चाहिए, पानी आने से पहले पाल बांधनी चाहिए। वास्तविकता वो है कि आप कुछ भी चिंता करो, कुछ भी प्लानिंग करके बैठो, जो भविष्य में होने वाला है पूर्व कर्म अनुसार वो प्रारब्ध अनुसार ही होगा, उसमें फेरफार करने का किसी का अधिकार नहीं है। इंद्र नरेंद्र जिनेंद्र किसी का अधिकार नहीं है। जिसने जैसा कर्म किया है वैसा कर्मफल उसको भोगना ही है, उसमें कोई फेरफार नहीं कर सकता। इसलिए वर्तमान और भविष्य के संयोग की चिंता को साइड में रख करके, गौण करके, मुख्य रूप से अपनी आत्मा की चिंतना करना, ऐसा ज्ञानियों की आज्ञा है। ये ज्ञानी की आज्ञा है और हमें उसको शिरोधार्य करना है, हमको आज्ञा को उठानी है और वही हमको करना चाहिए। इसके लिए ऐसा नहीं हुआ होता तो सुख होता, ऐसा स्मरण मत कर। क्या कहते हैं, कारण कार्य की चिंता। इसके लिए ऐसा नहीं होता तो हमको सुख होता, ऐसा होता तो हमको दुख होता, ऐसा होता है तो हमको सुख होता है। दूसरों के कारण से हमको सुख दुख होता है, ये बात हमको भूल जानी चाहिए, स्मरण भी नहीं करना चाहिए। क्यों? कि दूसरों के कारण से हमको सुख दुख होता नहीं है। हमारी मान्यता, हमारी धारणा के अनुसार हमारे परिणाम है और हमारी योग्यता के कारण से हमारा परिणाम है, दूसरों के कारण से हमारा परिणाम नहीं है। कभी हमारे परिणाम की जिम्मेवारी दूसरों के ऊपर हमें आरोपित नहीं करनी चाहिए। जो परिणाम होता है वो हमारी मान्यता, हमारे अज्ञान, हमारी समझ, उसी के अनुसार हमारी योग्यता जो है ऐसा ही परिणाम होगा, दूसरे प्रकार से नहीं होगा। इसलिए ऐसा होने से हमको सुख होता वरना हमको दुख होता, ऐसा भी हमको स्मरण नहीं करना चाहिए। ऐसा हुआ नहीं होता तो सुख होता, इसका मतलब क्या कि ऐसा उदय नहीं आया होता तो हमको सुख होता। उदय किस कारण से आया? कि उदय अपने कारण से आया, हमारे पूर्व कर्म के कारण से उदय है, दूसरों के कारण से हमारा उदय नहीं है। इसलिए ऐसा नहीं होता, हुआ होता तो हमको सुख होता, ये बात सही नहीं है। इतना होना चाहिए आत्मो आ प्रमाणे हो तो, मैंने कोई भी बात इतनी होवे तो अच्छा, ऐसा आग्रह करके नहीं रखना। मैंने किसी भी संयोग या परिस्थिति का आग्रह नहीं होना चाहिए हमें। क्या कहते हैं, आग्रह का मतलब ये होता है कि हमारे परिणाम अनुसार ये परिस्थिति दूसरा परिणमन होना ही चाहिए, दूसरे पदार्थ का परिणमन मेरे धारणा अनुसार, मेरी इच्छा अनुसार होना ही चाहिए, क्यों नहीं होवे? ये जो आग्रह है वो जीव को आकुलता को उत्पन्न करता है, क्रोधादि कषाय को भी उत्पन्न करता है। इसलिए ऐसा आग्रह कभी नहीं रखना कि ऐसा ही होना चाहिए, जैसा हुआ वैसा हुआ, होने लायक सब होता है, नहीं होने लायक दुनिया में कोई परिस्थिति बनती नहीं, ऐसी कुदरत की व्यवस्था है कि जो भी बनता है वो होने लायक ही बनता है। कुदरत के यहां एक सेकंड की देर भी नहीं लगती और कुछ हिनाधिक भी नहीं होता, हिन मैंने थोड़ा कम वैसे भी नहीं होता, जो भी होने लायक है वही होता है। जैसे पेड़ पे फल पकता है, फल बैठता है, बड़ा होता है और पकता भी है, वो अपने काल में होता है, उसमें कोई जल्दबाजी करना चाहे तो नहीं हो सकता। जैसे हमने हमारे आंगन में, हमारे कंपाउंड में आम का पेड़ बोया, आज तो हमने बो दिया और कल हमको आम खाना है, कैसे बनेगा? उसमें से अंकुर निकलेगा, पेड़ बड़ा होएगा, फिर उस पर फल फूल आएगा, फिर फल आएगा और पकेगा। वैसे ही व्यवस्था कुदरत के घर में उतनी व्यवस्थित है कि सभी पदार्थ की अवस्था अपने स्वकाल में होने लायक ही होती है, उसमें कोई नहीं होने लायक हो ही नहीं सकते। ऐसा पदार्थ का साइंस है, विज्ञान है, इसलिए ये इस प्रमाण में होता ऐसा अपने को आग्रह नहीं होना चाहिए।
बुद्धि में तो आता है, हाँ, बुद्धि में तो समझ में आता, परिणमन में नहीं।
परिणमन में तो आपको मेरे को सुखी होना है या दुखी होना है, क्या करना है? देखिए, कोई जीव दुखी होता है तो अपने अज्ञान के कारण से होता है। ज्ञान है, सही ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, ये सुख का कारण है, दुख का कारण नहीं। इसलिए जिसको सही ज्ञान होता है वो हमेशा सुखी होता है। इसलिए ये जो सम्यक ज्ञान प्राप्त करने का जो प्रयास है, इसके पीछे यही अभिप्राय है कि हमको हर हालत में सुखी रहना है, सुखी होना है, हमको कभी दुखी नहीं होना है। इसलिए जब जब हमको दुख होवे, जब भी दुख होवे, हमें यही विचार करना चाहिए कि अज्ञान के कारण से ये हो रहा है, वरना दुख हो ही नहीं सकता। तो मेरा ये अज्ञान किस प्रकार का है, कैसा है, उसकी खोज करने में चले जाना है और ये अज्ञान को मिटाना है, दुख स्वयं मिट जाएगा। दुख को मिटाने के लिए दूसरा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, दुख स्वयं मिट जाएगा।
बहुत सबसे इच्छा अनुसार जो घटना घटती है वो तो स्वकाल में होती है,
हैं? वो भी स्वकाल में होते हैं।
कभी अपनी इच्छा किया उसका स्वभाव साफ हो जाता है, घटना घट जाती है, तो हमेशा लगता है कि हमारी इच्छा अनुसार हो गया, तो उस टाइम पे किस तरह से ये जो बात वो बात हमारे मन में नहीं आ रही, उसकी क्या
वो एक भ्रांति है। अपने को इच्छा हुआ और उस अनुसार बाहर में कार्य भी हुआ, तो मेरी इच्छा के कारण से हुआ और हमारे ऐसी समझ के कारण से हुआ, ये जीव की भ्रांति है। ऐसा ही होने लायक था और इसलिए हुआ है, हमारे कारण से नहीं हुआ है। वैसे दूसरे के कारण से हमको सुख दुख नहीं होना चाहिए, वैसे हमारे कारण से दूसरे को, दूसरे का ऐसा होता है, वो बात भी सही नहीं है, वो भी गलत समझ है। और इसलिए कुछ कार्य हमारी इच्छा के अनुसार होता है और कुछ हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता है, तो हमको आकुलता होती है। क्यों? हम मान बैठते हैं कि हमारी इच्छा के अनुसार होना ही चाहिए। ये जो आग्रह वाला अभिप्राय है वो हमेशा हमेशा जीव को दुखी करता है, वो तो दुखदायक है। इसलिए कृपालु देव ने लिखा कि यह इस प्रकार से होता तो अच्छा रहता, ऐसा आग्रह मत कर, ऐसा आग्रह मत कर, और ऐसा अभिप्राय भी करके नहीं बैठना। जो भी होने लायक है वही होता है, नहीं होने लायक कुछ होता ही नहीं। और जो होता है उसमें आत्मा को कोई लाभ नुकसान है वो बात भी है ही नहीं। संयोग के फेरफार में आत्मा को लाभ नुकसान नहीं है, जीव में कुछ हेरफेर नहीं होता। जीव तो अपने स्वरूप में जैसा है वैसा ही रहता है, इसलिए ऐसा आग्रह नहीं होना चाहिए कि ऐसा ही होवे। आग्रह है, उनमें से कुछ शब्द बने हैं, सत्याग्रह, दुराग्रह, हठाग्रह, मताग्रह, कदाग्रह, ऐसे शब्द बने हैं। ज्ञानी कहते हैं कि आग्रह ही तुम मत रखो, तो दूसरे दूसरे आग्रह तो दुख के कारण है ही, लेकिन सत्याग्रह तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सत्य और आग्रह का मेल खाता नहीं है। गांधी जी तो बहुत सत्याग्रह करते थे, कराते थे, हाँ, तो कि नहीं, वो पारमार्थिक दृष्टिकोण में सही नहीं है, वास्तविक रूप से वो सही नहीं है, और आत्मा को ये सुख का कारण कभी नहीं बनता, ये दुख का ही कारण बनता है। सत्य वो है कि जो होने वाला होता है उसमें आग्रह रखना ही नहीं, वो सत्य है, दूसरा कोई सत्याग्रह हो ही नहीं सकता, ऐसी बात है। लौकिक में भ्रांति होने का बहुत प्रसंग है, लौकिक प्रसंगों में भ्रांति होने की बहुत सी बातें हैं। ये तो एक ऐसी पारमार्थिक शिक्षा है, एक पारमार्थिक ज्ञान है कि जिसके कारण से जीव को कभी दुख हो ही नहीं, हर हालत में वो सुखी सुखी रहे, ऐसी एक परिस्थिति इस पारमार्थिक मार्ग में है। उसने मेरे प्रति अनुचित किया ऐसा स्मरण भी नहीं सीखना, स्मरण करने को भी नहीं सीखना। देखो दूसरी बात तो आरोप तो करना ही मत कि उसने मेरे प्रति अनुचित किया है, वैसा आरोप तो मत करना, लेकिन उसका स्मरण भी नहीं करना। क्यों? कि जो भी दूसरे जीव के भाव है, अभिप्राय है, परिणाम है, वो उसके अस्तित्व में है। कोई मेरा सुधार बिगाड़ नहीं कर सकता इस विश्व में, मेरा सुधार बिगाड़ करने का किसी का अधिकार नहीं, किसी की ताकत नहीं, और किसी के कार्य क्षेत्र की मर्यादा में वो बात आती नहीं, बन ही नहीं सकता। इसलिए ऐसा स्मरण भी नहीं करना चाहिए कि उसने मेरा बिगाड़ा, उसने मेरे के प्रति अनुचित कार्य किया, स्मरण भी नहीं करना चाहिए। देखो ये वितराग होने के लिए ज्ञानी कहते हैं रागी द्वेष तो संसार में होते ही जीव, वितराग कैसे हुआ जाए वो बात है। क्यों कि कोई मेरा सुधार बिगाड़ कर सकता नहीं, परिणाम कर सकता है, अभिप्राय रख सकता है, बाकी जो होने वाला है वही होता है, किसी के कारण से कुछ होता है नहीं। इसलिए किसी का भय रखना भी बेकार है, कोई भय रखने का कारण है ही नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता। हमारे एक मुमुक्षु थे, कुछ भ्रांति में आ गए कि मेरे पर कुछ लोग मंत्र तंत्र का प्रयोग करके मुझे परेशान करने की प्रयास करते हैं और उसका मुझे बार बार बहुत विचार आता है, भय होता है, मुझे क्या करना चाहिए। मैंने कहा भाई कोई कुछ कर ही नहीं सकता, तुम फालतू का भयभीत होते हो, कोई कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें नहीं नहीं ऐसी विद्या तो होती है और कुछ लोग कुछ कर भी सकते हैं, इनके विद्या होती है वो बात ठीक है, लेकिन इसके कारण से कोई किसी को कुछ कर सकते वो बात ठीक नहीं है। नहीं नहीं ये तो डर तो लगता है। मैंने कहा ऐसा करो तुमको निर्भय होना है ना, तो जो भी तुम्हारे मन में हो के वो करता है, ये करता है, वो करता है, उसको बोल देना कि मेरे को कर दे। क्या बोले? हमको कर दे, तुम्हारे बजाय हमको कर दे, अगर वो कर सकता है तो। कोई नहीं कर सकता, देखो हम कितना निर्भय होकर के बात करते हैं कि बोल देना इसको को हमको कर दे, लेकिन हम जानते हैं कि हमको कुछ कोई कर ही नहीं सकते, तो मंत्र तंत्र वाली बात हमारे पे आ ही नहीं सकती। लेकिन भ्रम होता है तो जीव को भयभीत होना पड़ता है, दुखी होता है। थोड़ा समाधान के लिए कहा कि तुम तो जैन हो, नमस्कार महामंत्र है, इससे बड़ा कोई महामंत्र है ही नहीं, तो तुम्हारे मंत्र तंत्र के सामने महामंत्र को रखो तुम। दूसरा उनको समाधान नहीं होता था, उनको लगता था कि नहीं मेरे पे कुछ हो ही रहा है, मुझे कुछ कर ही रहे हैं लोग, तो तुम नमस्कार महामंत्र का स्मरण करके निर्भय हो जाओ ना। वो महामंत्र से बड़ा कोई महामंत्र है जगत में तुमको लगता है क्या? तो नहीं, ये तो सबसे बड़ा महामंत्र है। मैंने कहा ठीक है इसकी शरण ले लो, तुम चले जाओ उसके शरण में। ये तो उनको युक्ति बता दिया। वास्तव में ऐसी बात है कि कोई किसी पे कुछ भी कर सकता नहीं है, इसलिए ऐसा स्मरण भी नहीं करना। और उसने मेरे प्रति उचित किया ऐसा भी स्मरण नहीं करना, क्योंकि दोनों एक ही बात है। अगर ऐसा मानोगे कि उसने उचित किया तो दूसरा ने अनुचित किया वो बात आए बिना रहेगी नहीं, तो एक पर राग होगा दूसरे पे द्वेष होगा। और वितरागता में दोनों करने की बात नहीं है, जिसको वितराग होना है उसमें न राग करना है न द्वेष करना है। मिलने मुझे अशुभ निमित्त है ऐसा विकल्प भी नहीं करना। अशुभ निमित्त माने एक कल्पना है, द्वेष आए बिना नहीं रहेगा। ऐसी कल्पना करने से, ऐसा विकल्प करने से द्वेष हुए बिना नहीं रहेगा। और यह मुझे शुभ निमित्त है ऐसी दृढ़ता मान करके नहीं बैठना, क्योंकि एक पर राग होगा दूसरे पे द्वेष होगा, वो तो राग द्वेष करने लायक नहीं है। कोई अन्य पदार्थ मेरे लिए शुभ भी नहीं और अशुभ भी नहीं, ये सब कल्पना है फालतू की और कुछ नहीं है। वितराग मार्ग पर चलने वाला ऐसा ही विचार करता है, पर उसको ज्ञानी ऐसी शिक्षा देते हैं, ऐसा ही उपदेश देते हैं कि ऐसी कल्पना नहीं करनी चाहिए। ये लोग ज्योतिष का आश्रय लेते हैं मानसिक कमजोरी के वशात, किसके वश? मानसिक कमजोरी के कारण से। ये शुभ निमित है, ये शुभ निमित है, ये सब बात गणित नहीं है, वो बात नहीं है, परंतु अपने पारमार्थिक मार्ग में इसको बीच में नहीं ले आना है। वो अपने में है, अपना रास्ता कोई अलग है, उसमें शुभ शुभ निमित्त की कोई गिनती करना नहीं चाहिए, ऐसी शिक्षा है। और ये नहीं होता तो मैं बंधन में नहीं पड़ता, ऐसी अचल व्याख्या नहीं करेगा, भविष्य में भी नहीं करना करेगा कि ये नहीं होता तो मैं बंधन में नहीं पड़ता, इसके कारण से मैं बंधन में पड़ता हूं। प्राय लोग क्या करते हैं, अपने परिवार की बात लेते हैं कि देखो मुझे ये लड़का लड़की का बंधन है, इसका बंधन है, उसका बंधन है, वो बात सही नहीं है। किसी के कारण से कोई बंधता नहीं, बंधता है तो अपने राग के कारण से बनता है, दूसरे कारण से नहीं बनता। खुद का राग है तो बनता है, अगर खुद का राग नहीं है तो नहीं बनता है, सीधी सादी बात है। पूर्व कर्म बलवान है, इसलिए ये सब प्रसंग बन गए, ऐसा एकांतिक ग्रहण नहीं करेगा, नहीं करना चाहिए। पूर्व कर्म के विषय में भी एकांत नहीं करना, वो इसलिए बात किया है कि अगर जीव की भावना तीव्र होती है आत्मकल्याण की, तो कोई पूर्व कर्म के प्रसंग उसको बीच में आड़े नहीं आते। ये बात थोड़ी विचार करने लायक इसलिए है कि मुमुक्षु को प्राय ऐसा लगता है कि देखो हमारे पूर्व कर्म ऐसे हैं, इसलिए हमको ये सब प्रसंग बना है और हमारी भावना परिपूर्ण नहीं होती। हमको आत्मकल्याण की भावना तो बहुत है, लेकिन पूर्व कर्म के कारण से कोई ऐसी परिस्थिति में प्रसंग में आ गए हैं तो हमारा नहीं चलता, वो बात भी सही नहीं है। आत्मा के अंतर की यथार्थ भावना के आगे कुदरत को भी झुकना पड़ता है, क्या? कुदरत को भी झुकना पड़ता है, और कुदरत उस भावना को सफल बनाने की व्यवस्था कुदरत करती है, नौकरानी बनके। कैसे? नौकरानी बनके कुदरत काम करेगी। भावना में उतनी ताकत है इसलिए कभी ऐसा एकांत नहीं ग्रहण करना कि क्या करें ये पूर्व कर्म ऐसे हैं तो ये सब बात ऐसी बन रही है और हम क्या करें, हमको तो बहुत आत्म कल्याण करने की भावना है लेकिन करें भी क्या, ऐसा एकांत एकांत रूप से ग्रहण नहीं करना है। हमको अपनी भावना में रहना है और भावना बढ़ानी है, फिर परिस्थिति जो हो सो हो, परिस्थिति के वशात किसी भी परिस्थिति में हमारी भावना कमजोर नहीं होनी चाहिए, ये हमारे बस की बात है क्या। और हमारा अभिप्राय भी शुरू से ऐसा होना चाहिए कि कोई भी परिस्थिति आ जाए मेरी भावना में फर्क पड़ने वाला नहीं, कभी भी नहीं पड़ेगा, ऐसी दृढ़ और बलवान अचल भावना रहने से पूर्व कर्म के कारण से जो संयोग बने हैं उसका उसके ऊपर आरोप नहीं जाएगा, हम आरोप नहीं करेंगे और आरोप नहीं करने की शिक्षा है। हमको हमारी भावना को संभालना है, इसलिए पूर्व कर्म का एकांत हमको लागू नहीं पड़ता। पुरुषार्थ का विजय नहीं हुआ ऐसी निराशा का स्मरण भी नहीं करना। कई लोग ऐसे कहते हैं कि पुरुषार्थ तो हम करते हैं, बहुत करते हैं, लेकिन क्या करें, हम हार जाते हैं, पुरुषार्थ करके भी हम हार जाते हैं, हमारा पुरुषार्थ का विजय नहीं होता है ऐसा लगता है, ऐसा स्मरण भी नहीं करना चाहिए। क्या कहते हैं, इसका ऐसा स्मरण भी नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें निराशा आती है, मैंने तो पुरुषार्थ किया, क्या करें, पुरुषार्थ करने पर भी हमारा कार्य नहीं हो रहा है, ऐसा बन सकता नहीं, क्या ऐसा बन सकता नहीं। जितने अनुपात में, अनुपात मैंने प्रमाण, जितने परिमाण में पुरुषार्थ होता है उतने परिमाण में कार्य होता ही है, नहीं होता ऐसा नहीं बनता, लेकिन पुरुषार्थ नहीं हुए और विकल्प हुए उनको पुरुषार्थ मान करके बैठे तो पुरुषार्थ हम करते हैं लेकिन कार्य होता नहीं, ये बात आत्मकल्याण के मार्ग में कभी नहीं बनती। आत्मकल्याण के मार्ग में तो जितना पुरुषार्थ होता है उतनी कार्य सिद्धि अवश्य अवश्य होती ही है, नहीं हो ऐसा नहीं बने। विकल्प में थकान लगे तो थकान लगे वो पुरुषार्थ नहीं है, वो पुरुषार्थ नहीं है, पुरुषार्थ का वो स्वरूप नहीं है। आत्मकल्याण के पुरुषार्थ में किसी को थकान लगे ही नहीं, ऐसी बात है। क्यों, कि आकुलता होने से थकान लगती है और थकान में आकुलता होती है, पर आत्मिक पुरुषार्थ में निराकुलता और सुख शांति होती है, थकान कैसे लगेगी। ये तो थकान मिटने का पुरुषार्थ है, थकान होने का नहीं है क्या। ये आत्मिक पुरुषार्थ है वो तो थकान मिटने का पुरुषार्थ है, थकान लगने का पुरुषार्थ है ही नहीं, ऐसी बात है। इसलिए निराशा में कभी नहीं आना कि क्या करें मेरा पुरुषार्थ कामयाब नहीं होता, सफल नहीं होता, ऐसी निराशा में कभी नहीं आना। दूसरों के दोष से तुझे बंधन है ऐसा नहीं मानना। શું બીજાના દોષે તને બંધન છે એમ માનીશ નહીં, ક્યા કરે? કે દૂસરા જીવ દોષ કરતા હૈ ઓર બંધન મુજે હોતા હૈ, યે કભી નહીં બનતા હૈ। જિસકો દોષ હોતા હૈ ઉસકો બંધન હોતા હૈ। દૂસરે કે દોષ કે કારણ સે દૂસરે કો બંધન હો જાય યા અપને કો બંધન હો જાય, એસા કભી બનતા નહીં હૈ। दूसरे का परिणाम का फल उसको आएगा या हमको आएगा, किसको आएगा, ऐसा बन ही नहीं सकता। इसलिए ऐसी मान्यता नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल गलत मान्यता है। कोई दूसरे के दोष से अपने को बंधन हो ही नहीं सकता। कभी कोई कहते हैं इसने मुझे बंधन में डाला, मुझे फंसाया, मुझे ऐसा किया, वो बात गलत है। जो भी हुआ है वो तुम्हारे कारण से तुमको हुआ है, दूसरे के कारण से तुमको कुछ हुआ ही नहीं है। और अपने निमित्त से भी दूसरे को दोष करने को भुला देना, एक बहुत बड़ी सज्जनता की बात किया है कि हमें अपने निमित्त से दूसरे का परिणाम दूषित हो जाए, ऐसा कार्य हमें नहीं करना चाहिए। अगर हमको मालूम है कि ऐसा करने से इसका परिणाम बिगड़ता है तो वहां ऐसा नहीं लेना कि उसका परिणाम इसके कारण से बिगड़ता है, मैं क्या करूं। अगर तुमको मालूम है कि ऐसा करने से उसको नुकसान होगा, इसका परिणाम बिगड़ेगा, तो ऐसा निमित्त रूप कार्य भी हमको नहीं करना है, ऐसा निमित्त भी हमको नहीं बनना है कि दूसरे को दोष हो जाए, ये हमको नहीं करना चाहिए। उदाहरण वो है कि जैसे कोई देव गुरु शास्त्र का अवर्णवाद करता है, हाँ, तो हमारे कारण से ऐसा अवर्णवाद हुए, ऐसा निमित्त हमको नहीं बनना चाहिए, ठीक है। अब मेरे को मालूम है तो अपने को ऐसा कोई निमित्त रूप स्थान में नहीं खड़ा रहना चाहिए कि जिसका जिसके कारण से उनको दोष हो। वास्तव में तो उसका दोष हो भूल जाए, ऐसा हमें निमित्त बनना चाहिए कि हमारे कारण से वो दोष करने के लिए मिट जाए, ऐसा हमको होना चाहिए, ये हमारी परिस्थिति होनी चाहिए। यानी हमारा एटीट्यूड, हमारा बर्ताव ऐसा होना चाहिए कि कोई दोष करता है तो वो दोष नहीं करे, उनका ना दोष वो नहीं करे, ऐसा होना चाहिए। जैसे कि उसका भी उदाहरण ले लें कि कोई हमारा विरोध करता है, हमारा विरोध करता है तो हम उसका विरोध करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो विरोध करने वाले को पश्चाताप होवे, वैसा हमारा निमित्त होना चाहिए। उसका विरोध बढ़े, ऐसा हमारा नहीं होना चाहिए। उसको विरोध छोड़ने का अवसर आ जाए, ऐसा हमें करना चाहिए। एक दृष्टांत, ऐसा एक घटना घटी थी कि हमारे गुरुदेव के विरोधी थे वो, खास करके दिगंबर लोगों ने भी विरोध किया। अभी तो गुरुदेव के भक्त हो गए हैं, लेकिन एक समय जमाने में वो विरोध में थे। उनको कुछ हमारा काम पड़ा, लौकिक काम था, हमारे पास आए, हमारा इतना काम है आप कर देंगे क्या? हाँ बिल्कुल करेंगे, हमको मालूम था वो विरोधी है, करेंगे क्यों नहीं। तो फिर इसके लिए उसको कुछ पैसे चाहिए थे, तो बोले थे कुछ टाइम के लिए हमको इतनी रकम चाहिए और हम आपको ब्याज दे देंगे। मैंने कहा ठीक है ले जाओ आप। सीजनल कोई काम था उसका, ले जाना। मुझे क्या क्या ब्याज क्या लेंगे आप, कौन सा रेट लगाएंगे? हम बोले के इसकी चिंता आप मत करिए, कोई ज्यादा नहीं लेंगे। तो उसने उसने कोई स्पष्टीकरण क्लियर करना था, बोले कि हम 1.5 रुपया सैकड़ा देंगे। तो हमने बोला कि नहीं, हम 1.25 रुपया लेंगे। क्या बोले हम विरोधी थे ने, तो नहीं नहीं बाजार में 1.5 रुपया चलता है, हमको मालूम है। लेकिन आप तो कभी आपका काम तो हमने किया नहीं, अब आप फर्स्ट टाइम आए हैं, काम आपको आपका काम करने का हमको मौका मिला है, तो हमको कम लेना चाहिए ना, ज्यादा क्यों लेना चाहिए? उसको ऐसा लगा, अरे हम लोग तो इन लोगों से विरोध करते हैं और हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं क्या? पलट गया आदमी, इन लोगों का व्यवहार कोई दूसरा ही है, विरोधी के सामने विरोध नहीं करते। ऐसे एक तो घटना इनके साथ बनी, वो आदमी बिल्कुल पलट गया, और आज तो उतना पलटा है कि बात छोड़ो। तो अपने निमित्त से भी दूसरे को दोष करने को भुला देना, क्या कहते हैं, तारा निमित्ते पण बिजाने दोष कर तो भुला भुला दे उसको। ऐसा तुम करो कि दोष करने को तेरे निमित्त से दोष करता है तो भूल जाए, दोष करे ही नहीं, दोष करने को भूल जाए, ऐसा करो। तो उसके उसके दुकान पर माल खरीदने को गए, तो बोले कि हम आपका कुछ कम लेंगे। मैंने कहा नहीं, हम कम नहीं देंगे, हम दूसरे के दुकान से लेते तो पूरा ही देना पड़ता ना, आपको कम क्यों देंगे? हम कम देने के लिए नहीं आए, हम तो आपको 2 पैसे की कमाई हो गई इसलिए आपकी दुकान पर खरीद करते हैं, वरना तो दूसरे की दुकान पर क्यों नहीं जाते हैं? तो चौका कैसा ग्राहक तो मिलता नहीं, जो संबंधी होता है वो तो कम देने के लिए आता है, आप हमारा संबंध है थोड़ा कम ले लो। बोला कि नहीं, हम ऐसा संबंध नहीं रखते, हम संबंध इसलिए रखते हैं कि हमारे निमित्त से आपकी कमाई अच्छी हो गई, हमारे निमित्त से आपकी कमाई कम हो जाए वो हम नहीं चाहते। तो उनको लगा कि व्यवहार ही दूसरे प्रकार का है, एक तो प्रसंग बन गया, आदमी पलट गया बिल्कुल। ऐसा दूसरे का दोष करने को बुरा देने का भी कोई सदव्यवहार होता है, और ऐसा होने से वो भूल जाता है, क्योंकि आखिर में वो भी मनुष्य होता है, उनको भी कुछ फीलिंग होता है, तो अवश्य पलटता है। ऐसे कई प्रकार के वचन रूपालु देव ने सुखी होने के लिए कहे हैं, बहुत सी बातें हैं और भी, और विस्तार वाला पत्र है, लेकिन अपना समय हो गया है तो यहाँ तक रखेंगे।